आज है 26 नवंबर दिन मंगलवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। फैसले से पहले शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुंबई में दिखाई ताकत। ब्रिटेन ने चीन से कहा संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों को शिनजियांग जाने की अनुमति दी जाए। सुनिए चीन के बंदी शिविर से रिहा एक महिला की आप बीती।
उन्होंने कहा कि हम आपका ब्रेन वॉश करेंगे, आपके ख्यालात में मसला है। हमें कहा जाता था कि मजहब हमारे लिए अच्छा नहीं है।
और बताएंगे आपको उस गांव के बारे में जिसने पेश की है आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल।
सभी गाँव वालों ने फैसला किया है कि वो इस मस्जिद की जगह को मुसलमान कौम के हवाले कर देंगे, जिससे गाँव के मुसलमान यहाँ नमाज अदा कर सकें।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, विकास त्रिवेदी से। महाराष्ट्र में बीजेपी और अजित पवार की नई सरकार के खिलाफ एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। रविवार से शुरू हुई सुनवाई में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। विपक्षी दलों की अपील है कि विधानसभा में जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए। वहीं बीजेपी की अपील है कि इस मामले में जल्दीबाजी ना की जाए। अर्जेंटीना में एक अदालत ने दो रोमन कैथोलिक पादरियों को 40 से ज़्यादा साल की सज़ा सुनाई है। ये सज़ा चर्च स्कूल के एक बधिर बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सुनाई गई है। होशरियो कोरबाचो और निकालो कोर्रादी को लगातार 12 साल तक बलात्कार और उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया है। जब ये सज़ा सुनाई गई तब कोर्ट में पीड़ित भी मौजूद थे। पोप फ्रांसिस भी अर्जेंटीना से हैं और साल 2014 में उन्हें इस बारे में खत भेजा गया था। अर्जेंटीना में काफ़ी लोगों का आरोप है कि इस मामले पर एक्शन लेने में चर्च ने सुस्ती दिखाई है। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में चुनाव सुधारों की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर कैंप लगा दिया है। इससे पहले हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने संसद का मुख्य रास्ता बंद कर दिया था। इन लोगों का आरोप है कि सत्तारूढ़ जॉर्जियन ड्रीम पार्टी ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को लाने का वादा नहीं निभाया। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें चुनावों में कोई पार्टी जितने फीसदी वोट जीतती है उसे उतनी फीसदी सीटें ही संसद में मिलती हैं। आलोचकों का कहना है कि जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के चेयरमैन बिदजीना इवनिशविली को डर है कि इस प्रणाली के आने से उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ सकती है। एक हफ्ते पहले पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर पानी की तेज़ बौछारों यानी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रदर्शन तब शुरू हुए जब 10 दिन पहले सरकार समर्थक सांसद इस नई प्रणाली से संबंधित कानून को पास करवाने में नाकाम रहे थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल ने ह्यूमन राइट्स वॉच के एक कर्मचारी को निर्वासित कर दिया है। उमर शकीर पर आरोप है कि उन्होंने देश के बहिष्कार का समर्थन किया। बीते साल मई में उमर को वीसा देने से इनकार किया गया था। उमर पर आरोप है कि उन्होंने सरकार विरोधी कंटेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस संस्था का कहना है कि फ़लिस्तीन में अपनी नीतियों की वजह से हो रही आलोचनाओं को इसराइल दबाने की कोशिश कर रहा है। उमर शकीर पहले ऐसे मानवाधिकार प्रतिनिधि हैं जिन्हें नए कानून के तहत इस तरह से बाहर निकाला गया है। तेल अविव एयरपोर्ट पर उमर शकीर ने कहा कि मानवाधिकार को लेकर चल रहे आंदोलन पर हमला है।
Today culminates a 2.5 year effort to deport me.
मानवाधिकारों को लेकर मेरे काम की वजह से बीते 2.5 साल में मुझे देश से निकालने की कोशिशें आज पूरी हुई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ह्यूमन राइट्स वॉच को निशाना बनाया जा सके, लेकिन ये कोशिश भी बेकार हुई। इससे ये और पता चल गया कि किस कदर इसराइल और फलस्तीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये थे उमर शाकिर के शब्द। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की कमेटी ने यह सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में रूस पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। रूस पर लैब के डाटा को गलत तरीके से पेश करने का आरोप है। कमेटी ने यह पाया कि रूसी अधिकारियों ने डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाने की जानकारी को डाटाबेस से हटाया। ये प्रतिबंध 2015 के उस मामले से भी जुड़ा है जिसमें रूस पर आरोप लगा था कि वो जानबूझकर और व्यवस्थित ढंग से डोपिंग की साजिश करता रहा है। अगर इस कमेटी की सिफारिशों को मान लिया गया तो रूसी खिलाड़ी अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में शामिल नहीं हो पाएंगे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। संदीप सोनी के साथ। महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के तौर तरीकों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सुबह 10:30 बजे का वक्त तय किया है। इस फैसले से पहले बीती रात मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस ने अपने विधायकों को एक साथ लाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। विधायकों ने अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहने की सौगंध ली है। बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट।
ये गूंजती हुई आवाज उन बेशकीमती विधायकों की है जो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बन चुके हैं। इन सभी विधायकों को कल एकजुट रहने की कसम खिलाई गई। कल देर शाम शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अपने जीते हुए विधायकों को एक होटल में इकट्ठा किया और उन सभी की परेड करवाई। सभी विधायकों को एकजुट रहने के लिए कसम खिलवाई गई और उनका फोटो सेशन भी करवाया गया। इस दौरान शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने सभी विधायकों को संबोधित भी किया और बार बार उन्हें एकजुट बने रहने के लिए कहा। एनसीपी के विधायक दल के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि जनता बीजेपी का समर्थन नहीं चाहती है और सभी 162 विधायक बीजेपी के खिलाफ हैं।
वो सरकार के खिलाफ लोगों का मत है, जनमत है, लोग इनको सपोर्ट नहीं करना चाहते। अगर ये बहुत पॉपुलर सरकार होती तो इतने रात को राष्ट्रपति राजवट निकाल के इनको पदग्रहण करने की जल्दबाजी नहीं होती।
कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर बीजेपी पर विधायकों को लालच देने के आरोप लगाए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर आरोप लगाए कि वो लालच देकर या डरा धमका कर विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार पूरी भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई है। एक तरफ ब्लैकमेल और दूसरी तरफ इंड्यूसमेंट देकर लोगों को तोड़ा जा रहा है और इसीलिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने दलील पेश की है कि तुरंत महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कराकर असलियत जान ली जाए कि किसके पास अक्सरियत है, किसके पास बहुमत है।
इस बीच महाराष्ट्र में अपनी दूसरी पारी शुरू कर चुके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक अहम बैठक में हिस्सा लेने गए, लेकिन उस बैठक की एक तस्वीर सुर्खियों में आ गई क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के बगल में लगी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली थी। कयास लगाए जाने लगे कि कहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार किसी तरह की असमंजस में तो नहीं है। एनसीपी खेमे की तरफ से उनकी घर वापसी की कोशिशें वैसे भी दिन भर चलती रहीं। हालांकि अजीत पवार से ही जुड़ी एक और खबर सामने आई कि उन पर चल रहे सिंचाई घोटाले से जुड़े करीब 9 केस बंद कर दिए गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति की गूंज कल दिल्ली में भी सुनाई दी। संसद भवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र में रातों रात बनी सरकार पर जमकर हल्ला किया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने संसदीय शालीनता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं।
संसद चर्चा की जगह है, संसद संवाद की जगह है, संसद बहस की भी जगह है। विरोध करने का विपक्ष का अधिकार है, लेकिन आज विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने संसदीय शालीनता, संसदीय संस्कार और संसदीय अनुशासन की सारी सीमाएं लांघ दी। एक तो वो बैनर लेकर के आए और उसके बाद जिस तरीके से एक कपड़े से संसदों को अपने सवाल पूछने से रोक रहे थे, ये तो बहुत ही गंभीर अनुशासनहीनता है।
वहीं इन तमाम गतिविधियों से पहले कल महाराष्ट्रवासियों के दिन की शुरुआत महाराष्ट्र की जगह दिल्ली से हुई। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर थीं, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अर्जी दायर की थी। कल सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने विधायकों के समर्थन वाला पत्र पेश किया, साथ ही उन्होंने राज्यपाल के नियोते वाली चिट्ठी भी सर्वोच्च अदालत में पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और अपना फैसला अगले दिन सुबह 10:30 बजे के लिए सुरक्षित कर दिया। यानी अब आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की राजनीति पर फैसला सुनाया जाएगा। सभी को इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में क्या कहता है, साथ ही महाराष्ट्र सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कितना वक्त मिलता है, इस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी। नवीन नेगी, बीबीसी दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट में कल जब दोनों पक्ष अपनी दलीलें दे रहे थे, फ्लोर टेस्ट का जिक्र बार बार हो रहा था। फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है और इसका क्या महत्व है, समझने के लिए नवीन नेगी ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन से बात की।
महाराष्ट्र जैसी स्थिति जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है अपने बलबूते पे या अपने अलायंस के साथ, तो फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र डिवाइस है जिससे आपको ये पता लगेगा कि कितने MLAs किस पार्टी के साथ हैं, जो पार्टी दावा करती है। तो ये बहुमत सिद्ध करने के लिए ही ये प्रक्रिया अपनाया जाता है, फ्लोर टेस्ट जिसको कहते हैं, और ये एकमात्र ही इंस्ट्रूमेंट है।
फ्लोर टेस्ट में एक चीज और आती है कि ध्वनि मत से उसको मान लिया गया या फिर वोट डाले जाते हैं बैलेट के जरिए, क्या होता है उसमें?
बैलेट के जरिए ही वोट डाले जाते हैं। जो आप देखते हैं पार्लियामेंट में जिस ढंग से वोट डाले जाते हैं, काउंटिंग होता है, तो ये ध्वनि मत से बिल्कुल नहीं होता है। ये वोट डाले जाते हैं, वाकई वोट को वेरीफाई किए जाते हैं, वाकई एक प्रॉपर प्रोसीजर है। असेंबली का कॉरिडोर वगैरह खाली किया जाता है और मार्शल्स वगैरह सब तैयार रहते हैं ताकि कुछ हंगामा हो या प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर पे हमला करते हैं वो सब, और एकदम ऑर्डर रहना चाहिए हाउस में। थोड़ा भी अगर किसी कोई हंगामा करता है या कुछ मिसबिहेवियर होता है तो वो क्रिया को फिर थोड़ी देर के लिए स्थगित करते हैं और फिर जब पूरा ऑर्डर रिस्टोर होता है तब फिर रिज्यूम होता है।
फ्लोर टेस्ट जो है सदन के स्पीकर की अध्यक्षता में करवाया जाता है।
हाँ, क्योंकि अभी कोई असेंबली है नहीं तो सबसे पहले MLAs को ओथ देना पड़ेगा। जहाँ महाराष्ट्र में अभी उन्होंने ओथ ही नहीं लिया MLAs ने, तो उसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। प्रोटेम स्पीकर को कोई ज्यादा पावर्स नहीं है, बस ओथ दिलवाते हैं जो चुने हुए MLAs को। और प्रोटेम स्पीकर जो है वो सबसे वरिष्ठ मेंबर जो होता है हाउस में, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है।
क्या फ्लोर टेस्ट में भी किसी तरह की राजनीतिक खेल खेले जा सकते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं?
बिल्कुल खेले जा सकते हैं। क्रॉस वोटिंग तो होता ही है, अक्सर होता है। हर एक पार्टी एक विप इशू करती है अपने मेंबर्स को कि इसी को वोट करना होगा। भाजपा हो तो कमल का सिंबल को वोट करना पड़ेगा, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो तो वो घड़ी का सिंबल।
अभी जैसे कहा जा रहा है कि अजीत पवार जो है विधायकों के नेता थे NCP की तरफ से और अब वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो ये पूरा राजनीतिक खेल हुआ उसमें NCP प्रमुख शरद पवार ने उनको हटा दिया विधानमंडल के नेता से। अब क्या उप मुख्यमंत्री होते हुए अजीत पवार अपनी पार्टी के लिए विप जारी कर सकते हैं कि आप लोग कमल के बटन को दबाएं, आप कमल के सिंबल?
हाँ, ये थोड़ा ग्रे एरिया है। देखिए, उनको हटाया तो गया है, लेकिन ये जो हटाने की का मामला है उसमें भी एक प्रक्रिया अपनाया जाता है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर पार्टी वो चुने गए हैं वो सारे विधायकों की सहमति से उन्हें लेजिस्लेचर पार्टी लीडर घोषित किया गया, इलेक्ट किया गया। तो अभी जो उन्हें हटाया गया है वो शरद पवार जी जो प्रेसिडेंट है NCP के, उन्होंने हटा दिया। लेकिन मेरी जो जानकारी है वो ये प्रक्रिया है कि अगर आप लीडर को हटाना चाहते हैं तो फिर से लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग को कन्वीन करना होगा।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन, जो महाराष्ट्र के संदर्भ में फ्लोर टेस्ट की बारीकियों को बता रही थी। और आइए अब जानते हैं दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है। मेरे सहयोगी विकास त्रिवेदी बड़ी देर से अखबारों की सुर्खियों को देख रहे हैं।
संदीप, महाराष्ट्र की सियासी हलचल जो है वो लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान टाइम्स की पहली खबर की जो हेडिंग है, VR 162 सेज NCP सेना कांग्रेस इन पावर परेड, यानी हम 162 है जो कल पावर परेड हुई थी और जो तीनों दलों ने मिलकर कहा था कि हम 162 है, और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड में रहा था। इस खबर में तीनों दलों के प्रमुख नेता दिख रहे हैं और पीछे भारत के संविधान की एक बड़ी सी तस्वीर है जिस होटल में ये परेड हुई थी वहाँ की। तो देखने वाली अपनी अपनी व्याख्या कर सकते हैं कि तस्वीर में रोशनी नेताओं पर है या उस संविधान पर जिसकी दुहाई बीते कुछ दिनों में काफी बार दी जा रही है।
और वो एक पहलू ये भी बता रहे हैं कि आज संविधान दिवस है, उसको भी जोड़कर देख रहे हैं।
जी जी, बिल्कुल। अगर शिवसेना के मुखपत्र सामना की बात करें तो अखबार की हेडिंग है, सत्ता मेव नहीं सत्यमेव जयते उद्धव ठाकरे, बराबर में लिखा है हम हैं 162, यानी जो वो नंबर वाला पूरा चल रहा है उसको लेकर सभी अखबारों ने अपनी हेडिंग में बहुत अच्छे से जिक्र किया है।
और BJP ने यह भी कहा है कि होटल में इस तरह से बहुमत दिखाने से सरकार नहीं बनती है।
जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट कल सिर्फ महाराष्ट्र की वजह से नहीं, प्रदूषण की वजह से भी चर्चा में रहा। हिंदुस्तान टाइम्स की दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण पर दुनिया हम पर हंस रही है, हम लोगों की जिंदगी घटा रहे हैं, लोग गैस चैम्बर में रहने को क्यों मजबूर हैं, विस्फोटक लाकर एक बार में ही सबको क्यों नहीं मार देते, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गुस्सा है। और ये देखिए संदीप जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कह दी है कल जब हम लोग आ रहे थे और जिससे हम जूझ रहे थे खांसते हुए जिस प्रदूषण से, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी संदर्भ में अपनी बातें कही हैं। जनसत्ता की खबर है कि महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले में के 9 मामले एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच बंद कर दी है। हालांकि अखबार ने एसीबी के महानिदेशक परमबीर सिंह के हवाले से साफ किया कि ये मामले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े हुए नहीं हैं। कल बहुत सारे तबके में और सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये अजीत पवार के मामले, पर उन्होंने ये साफ किया कि ये मामले उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। जनसत्ता की अगली खबर है कि अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिकाओं का 100 मुस्लिम हस्तियों ने किया विरोध। इन हस्तियों में शबाना आजमी और नसरुद्दीन शाह भी शामिल हैं। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जेएनयू की फीस वृद्धि को लेकर एक खबर छपी है कि यूजीसी ने 6.41 करोड़ रुपए जेएनयू को देने के लिए तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि इसके बाद अब जो बीते कुछ दिनों से प्रदर्शन चल रहे थे फीस को लेकर, उसमें कमी हो सकती है।
लेकिन क्या ये बताया गया है कि जो फीस बढ़ाने की बात हो रही थी वो फैसले पे सरकार एचआरडी मिनिस्ट्री कायम है या नहीं है,
इस बारे में कोई खास डिटेल नहीं दी गई है। इसी अखबार में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को जगह दी गई है। ममता ने कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि रिफ्यूजी सेटलमेंट को रेगुलराइज किया जाएगा, और अखबार हेडिंग लगाता है ममता का एनआरसी का काउंटर। हिंदुस्तान अखबार की खबर है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण 10 लाख से ज़्यादा दुकानों का फ्री होल्ड के जरिए मालिकाना हक देगा, इससे लोगों को सीलिंग से भी राहत मिलेगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार लिखता है कि बतौर सीएम देवेंद्र की पहली बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद नहीं रहे। इसी बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने करीब 5300 करोड़ रुपए का एक फंड किसानों के लिए जारी किया है। द हिंदू की खबर है कि जम्मू कश्मीर के नेताओं ने रिलीज बॉन्ड साइन करने से मना कर दिया है। बीते कुछ दिनों से अधिकारी नेताओं की रिहाई के लिए मिल भी रहे हैं, और अखबार ने हेडिंग लगाई है जेके लीडर्स रिफ्यूज टू साइन रिलीज बॉन्ड्स। इसके अलावा अगर बात करें द स्टेट्समैन की, तो जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो बहुत सारे दावे किए गए, तो अब इसी में एक जो उनकी बॉटम स्टोरी है सबसे नीचे पहले पन्ने की, तो ये लोग लिखते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्स बुद्धिस्ट मेडिसिन सेंटर्स इन लद्दाख नाउ, यानी जो मेडिसिन सेंटर है उनको मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमर उजाला की, तो अमर उजाला लोकपाल बीते कुछ सालों में काफ़ी चर्चा में रहे थे, तो इन्होंने एक छोटी सी खबर लगाई है, बिना फॉर्म ही लोकपाल ने निपटाई 1000 शिकायतें।
बहुत शुक्रिया विकास।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम में आगे बताएंगे आपको कौन सा है वो गांव जिसने पेश की है हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल। लेकिन पहले जिक्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिन्होंने कल अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस हटाकर जनता का सेवक लिख दिया, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया। भोपाल से शूर नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले इस नेता को लेकर हाल में कई खबरें फैली हुई हैं। कहीं कहा जा रहा है कि वह अपनी पार्टी से नाराज हैं, तो कहीं कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी के अंदर नजरअंदाज किया जा रहा है। कई बार वह प्रदेश में अपनी सरकार पर ही निशाना साध देते हैं, लेकिन ट्विटर हैंडल पर उन्होंने जो बदलाव किया है तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता हालांकि इसमें कुछ भी खास नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी कहते हैं,
और अब यदि वो आज गुना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और उसको परिवर्तन करके भी जनसेवक लिखा जाता है तो क्या आपत्ति है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने लिखा है आम आदमी कॉमन मैन ऑफ मध्य प्रदेश सीएम जो पहले थे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ मीडिया के मित्रों ने कांग्रेस से जोड़ा। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पहले भी सिंधिया जी आज तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, और पहले भी सिंधिया जी के ट्विटर हैंडल में पार्टी के किसी पद का जिक्र नहीं था और आज भी जिक्र नहीं है। और सिंधिया जी ने पहले गुना के फॉरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते उसका जिक्र किया था, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। जनसेवक की बात की जा रही है, क्रिकेट प्रेमी की बात की जा रही है, इतना सा विषय।
लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन बातों में ज्यादा राजनीति देखने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर वह कुछ कहना चाहते हैं तो वह सीधे कर सकते हैं, इसलिए इन मामलों को बेवजह तूल दिया जा रहा है। दिनेश गुप्ता कहते हैं,
इससे क्या होता है, सोशल मीडिया पर किसी भी स्टेटस पे हम राजनीतिक अर्थ नहीं निकाल सकते कोई भी कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि कई चीजें बहुत जो है ना राजनीति में कई सुनी चीजों पर आधारित होती है। राजनीति में जो है यदि कई सुनी चीजों पर आधारित नहीं होती और सब कुछ फैक्चुअल होता तो हमारे सामने महाराष्ट्र का घटनाक्रम है सामने। महाराष्ट्र में तो लोगों को बिना स्टेटस बदले हुए पूरा जो है चेंज हो गया सिनेरियो। यदि कोई भी ऐसा कदम उठाना चाहता है तो वो इंडिकेशन नहीं देता है, वो तो अपनी जो भी रणनीति है उसको गोपनीय रखने की कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा गोपनीयता बनी रहे जब तक कि कोई लॉजिकल एंड पर नहीं पहुंच जाए।
वहीं भाजपा के नेता भी अभी इसमें कुछ ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। भाजपा के नेताओं का कहना यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने संदेशों में स्पष्टता लाने की जरूरत है। पिछले महीने सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को 4 पत्र लिखे थे जिनमें उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद और प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों के सुधारने के बारे में लिखा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनमें से किसी भी पत्र का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वहीं इस बीच में उनके समर्थक लगातार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में हार के बाद सिंधिया अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं। कई का मानना है कि अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए भी सिंधिया लगातार इस तरह के कदम उठा रहे हैं। शुरह न्याजी, बीबीसी भोपाल।
अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। चीन ने उन खबरों को फर्जी खबरें बताया है जो ये कहती हैं कि शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों को कैद में रखकर प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि कुछ सबूत इसके विपरीत बात कहते हैं। ब्रिटेन ने चीन से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों को शिनजियांग जाने की अनुमति दी जाए। ज्यादा जानकारी के साथ विकास त्रिवेदी।
ब्रिटेन ने चीन से कहा है कि उसे अपने शिनजियांग प्रांत में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों को जाने की निर्बाध और फौरन अनुमति देनी चाहिए। ब्रिटेन ने ये बात तब कही है जब लीक हुए डेटा से ये बात सामने आई है कि चीन ने शिनजियांग प्रांत में हजारों मुसलमानों को बेहद कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में रखा है जहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बीबीसी पेनोरमा ने उन आधिकारिक दस्तावेजों को देखा है जिसमें बताया गया है कि मुसलमानों को किस तरह कैद में रखकर दंडित किया जा रहा है, लेकिन चीन के राजदूत ने इस लीक को फेक न्यूज बताया है। चीन के राजदूत लियो शाओमिंग का कहना है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे कोई लेबर कैंप नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। हम इन्हें वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। इन्हें चरमपंथियों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये थे चीन के राजदूत लियो शाओमिंग के शब्द। लेकिन ऐसे सबूत मिले हैं जो चीन के राजदूत के दावे के विपरीत हैं। गुलजीरा ने चीन के एक ऐसे ही गोपनीय बंदी शिविर में 15 महीने गुजारे हैं। वो बताती हैं,
उन्होंने कहा कि हम आपका ब्रेन वॉश करेंगे, आपके ख्यालात में मसला है। हमें कहा जाता था कि मजहब हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो ये बात हर रोज करते थे। वो हमारे मजहब और जुबान को तबाह कर रहे हैं। बाज़ औक़ात में बहुत रोती थी क्योंकि मुझे अपनी बेटी और घर बहुत याद आता था। वो मुझे बाहर ले गए और बिठा दिया, हाथ और पांव में जंजीर ऐसे डाल दी कि सीधा नहीं हुआ जाता था। आपको नहीं मालूम होता कि कब तक ऐसी पोजीशन में रहना है। जब ये वक्त खत्म होता है तो आपका चेहरा, पांव और बाजू सूज चुके होते हैं।
गुलजीरा के दावे के विपरीत ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियो शाओमिंग कहते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर जैसे कदम स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं। यही वजह है कि शिनजियांग में बीते 3 सालों में एक भी चरमपंथी हमला नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पश्चिमी देशों में कुछ लोग इसके बारे में कुछ और सोचते हैं और चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करते हैं। इससे चीन के चरमपंथ से लड़ने के प्रयासों में बाधा आती है। चीन की सरकार शिनजियांग प्रांत में इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ अभियान चलाती रही है और इस सिलसिले में वीगर मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने की खबरें भी सामने आती रही हैं। इनमें असामान्य रूप से लंबी दाढ़ी रखने, सार्वजनिक स्थानों पर नकाब लगाने और सरकारी टीवी चैनल देखने से मना करने जैसी पाबंदियां शामिल हैं। चीन के वीगर मुसलमान शिनजियांग प्रांत में बसे हैं जो सरकार पर अपने साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल के वर्षों में इस प्रांत में कई खूनी संघर्ष हुए हैं, लेकिन चीनी सरकार इस हिंसा के लिए इस्लामिक चरमपंथियों और अलगाववादियों को जिम्मेदार बताती है।
रिपोर्ट सुना रहे थे विकास त्रिवेदी। और अब चलिए बीबीसी पंजाबी सेवा के हमारे साथी सरबजीत धालीवाल के साथ उस गांव में जहां सिखों ने मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा किया कि सब वाह वाह कर रहे हैं।
इस मकसद ने बुरे टाइम सानू पनाह दी, इस करके इस मकसद अगे साडा सिर झुकदा। साडे गुरुआं दा उपदेश ये सी, मानस की जात सभी एक ही पहचान।
हमने बुरे वक्त में एक मस्जिद में शरण ली थी, इसलिए हमारे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत है। हमारे गुरुओं ने कहा है कि सभी इंसान एक समान हैं। मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ, बंटवारे के समय हम इस गांव में आ गए। यह मस्जिद बंटवारे से पहले यहां थी। जब हम यहां आए तो यह बंद पड़ी थी। मुझे नहीं पता कि उससे पहले यहां प्रार्थना होती थी या नहीं।
नमाज पढ़ते थे या नहीं, मैं नहीं पता, क्योंकि मैं तो आया 1947 में।
ये शब्द पंजाब के मोगा जिले के महना गांव के सरपंच रंजीत सिंह के हैं। उनकी आवाज में खुशी और उत्साह दोनों ही महसूस किए जा सकते हैं। रंजीत सिंह जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं वो उनके ही गांव में पड़ती है। ये मस्जिद आजादी से पहले के वक्त से इस गांव में है। अब सभी गांव वालों ने फैसला किया है कि वो इस मस्जिद की जगह को मुसलमान कौम के हवाले कर देंगे, जिससे गांव के मुसलमान यहां नमाज अदा कर सकें। सरपंच रंजीत सिंह बताते हैं कि उनके गांव में सभी लोग बहुत ही भाईचारे से रहते हैं। यही वजह है कि गांव के लोगों ने मस्जिद मुसलमान कौम को सौंपने का फैसला किया है।
मेरे मन में भी मुसलमान भाईचारा,
मुझे लगता था कि मुसलमानों को इस बात का दुख रहता होगा कि उनके पास प्रार्थना करने के लिए कोई मस्जिद नहीं है, इसीलिए हमने सोचा कि इस मस्जिद को मुसलमानों को ही सौंप देना चाहिए।
मन बना लिया भी मुसलमान तबके के हवाले करने।
बंटवारे के समय भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान की तरफ गए, तो वहीं पाकिस्तान में रहने वाले कई सिख भारत में आए, लेकिन फिर भी कुछ मुसलमानों ने भारत में ही रहने का फैसला किया था। जो गांव कभी मुस्लिम आबादी से भरे होते थे वहीं अब मुसलमान अल्पसंख्यक में है। महना गांव की बात करें तो इस गांव की आबादी करीब 6000 है। बंटवारे से पहले महना गांव में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा थी, लेकिन बंटवारे के बाद यहां सिख लोगों की तादाद बढ़ गई। हालांकि बीते कुछ सालों में खेतीबाड़ी और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों से भी मुसलमान परिवार इस गांव में आए हैं। रंजीत सिंह बताते हैं कि गाँव वालों ने मस्जिद बनवाने के लिए आर्थिक मदद भी की है।
हम लोगों ने मस्जिद बनवाने के लिए पैसे भी जोड़े हैं। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। इस मुद्दे पर सभी गांव वाले एकमत हैं।
रहमते मस्जिद नाम से इस मस्जिद को दोबारा तैयार किया गया है। गांव में कुल 14 मुस्लिम परिवार रहते हैं। गांव में अपनी मस्जिद होने से मुसलमान समुदाय में काफी उत्साह है। इस गांव के मौलवी अब्दुल वाहिद कहते हैं कि गांव के सिखों ने न सिर्फ मस्जिद बनाकर दी है बल्कि उसकी देखरेख करने की बात भी कही है।
तो यहाँ पे जो मुसलमान हैं उन्होंने इसकी जरूरत को महसूस किया, तो हमारे जो सिख भाई हैं उन सब ने बैठ कर और मुसलमानों ने बैठ कर आपस में मशवरा किया। मशवरा करने के बाद में जो है बाखुशी मुसलमानों के हवाले कर दिया, और फिर ये कहा कि भाई हमें मस्जिद को आप लोगों को सौंपने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि ये आबाद हो, इसमें 5 वक्त अजान और नमाज होती रहे। ऐसा ना हो कि भाई मस्जिद खुलने के बाद भी और ये फिर गैर आबाद रहे, कि मस्जिद को देने के बाद में इसके आबाद होने की भी हमारे सिख भाइयों को फिक्र है। ये हमें एक बहुत ही कुछ गहराई के साथ संदेश देती है ये बात।
ऐसे वक्त में जब भारत में मंदिर मस्जिद का एक लंबा विवाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से हाल ही में निपटा है, महना गांव के लोगों ने आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की है। बीबीसी हिंदी के लिए महना गांव से सरबजीत धालीवाल।
और इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते मुख्य समाचार पुनः विकास त्रिवेदी से।
बीबीसी समाचार। महाराष्ट्र में बीजेपी और अजित पवार की नई सरकार के खिलाफ एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। अर्जेंटीना में एक अदालत ने 2 रोमन कैथोलिक पादरियों को 40 से ज्यादा साल की सजा सुनाई है। ये सजा चर्च स्कूल के एक बधिर बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सुनाई गई है। जॉर्जिया की राजधानी तिबलिसी में चुनाव सुधारों की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर कैंप लगा दिया है। इससे पहले हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने संसद का मुख्य रास्ता बंद कर दिया था। इसराइल ने ह्यूमन राइट्स वॉच के एक कर्मचारी को निर्वासित कर दिया है। उमर शकीर पर आरोप है कि उन्होंने देश के बहिष्कार का समर्थन किया। बीते साल मई में उमर को वीजा देने से इसराइल ने इनकार किया था। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की कमेटी ने सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में रूस पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।